بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پہ۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahartv.ir اور ای میل ایڈریس ہے andaz_jahan@sahartv.ir۔ اور انداز جہاں میں آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے ہندوستان کی نئی حکومت اور ہند پاک تعلقات۔ تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ ہندوستان کے پارلیمانی انتخابات میں بھارتی جنتا پارٹی کی تاریخی کامیابی کے بعد ہی پاکستان کے صحافتی حلقوں میں ایک نئی بحث شروع ہو گئی تھی کہ بی جے پی کی تاریخی فتح کے بعد نئی دہلی اور اسلام آباد کے تعلقات پر کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ بعض حلقوں نے انتخابی مہم کے دوران بعض بی جے پی رہنماؤں کے پاکستان مخالف بیانات اور بی جے پی کارکنوں کے انتہا پسندانہ نعروں کے پیش نظر تحفظات و خدشات کا اظہار کیا، اور بعض نے توقع ظاہر کی تھی کہ تعلقات میں بہتری آئے گی۔ پھر جب نریندر مودی کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے نواز شریف کو دعوت نامہ ارسال کیا گیا تو بعض پاکستانی صحافیوں نے وزیر اعظم نواز شریف کو نصیحت کی کہ جلد بازی سے کام نہ لیں بلکہ سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں۔ بہرحال پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے تقریب میں شرکت کا فیصلہ کیا اور انہیں ہندوستان میں خاطر خواہ پذیرائی بھی ملی۔ اگرچہ ہندوستان کے نو منتخب وزیر اعظم کی تقریب حلف برداری میں شرکت کی دعوت سارک کے رکن سبھی ملکوں کے سربراہوں کو دی گئی تھی، لیکن ہندوستان کے میڈیا اور صحافتی حلقوں نے جو اہمیت پاکستان کے وزیر اعظم کو دی وہ کسی اور کو نہیں ملی۔ منگل کو دونوں ملکوں کے وزراء اعظم کی ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات میں جو گفتگو ہوئی اور جس ماحول میں گفتگو ہوئی اس کو اچھی پیش رفت سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم پہلے نواز شریف صاحب کے دورے دہلی کی اہمیت پر گفتگو کریں گے، اس کے بعد نریندر مودی کے ساتھ ان کی گفتگو کا جائزہ لیں گے۔ ہندوستان میں اس کو اچھی پیش رفت سے تعبیر کیا گیا ہے، اس تعلق سے پاکستان کے سیاسی اور صحافتی حلقوں کا رد عمل بھی معلوم کریں گے۔ اور نواز شریف صاحب نے دہلی پہنچنے کے بعد کہا تھا کہ وہ ہندوستان کی نئی حکومت کے ساتھ وہیں سے روابط کا آغاز کرنا چاہیں گے جہاں اٹل بہاری واجپئی کے دور میں پہنچے تھے۔ اس تناظر میں واجپئی کے دور میں ہند پاک روابط میں آنے والی پیش رفت کا مختصر جائزہ لینے کے بعد یہ سمجھنے کی کوشش کی جائے گی کہ کیا پاکستان کے ساتھ روابط کے فروغ کے حوالے سے ہندوستان کے نئے وزیر اعظم نریندر مودی خود کو سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کا سچا جانشین ثابت کر سکیں گے۔ لیکن پہلے ہماری رپورٹ۔
ہندوستان میں نریندر مودی کی قیادت میں نئی حکومت کی تشکیل کے بعد پاک ہند رشتوں کے سلسلے میں نئی قیاس آرائیاں شروع ہو گئی ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ دونوں ملکوں کے وزراء اعظم نے اچھی شروعات کی ہے۔ نواز شریف ہندوستان کا دورہ کر کے مودی کی تقریب حلف برداری میں شرکت کرنے آئے اور انہوں نے ہندوستانی وزیراعظم کو پاکستان کے دورے کی دعوت دی کہ جسے مودی نے قبول کر لیا ہے۔ لیکن حقیقت امر یہ ہے کہ دونوں ملکوں کے اندر مختلف حلقوں میں بہت کچھ شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ دونوں ملکوں کے اندر موجود ایسے حلقے ہیں کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پاک ہند تعلقات کو معمول پر دیکھنا نہیں چاہتے۔ تجزیہ نگاروں کی طرف سے نواز شریف حکومت کو یہ مشورہ دیا جا رہا ہے کہ وہ اب جبکہ ہندوستان میں نئی قیادت نے ملک کا انتظام سنبھال لیا ہے تو پاکستان کو ہندوستان کے انتخابات کے نتائج کے باعث دونوں ممالک کے درمیان تعلقات پر مرتب ہونے والے اثرات کا نہایت ہی پرسکون انداز میں جائزہ لینا چاہیے اور یہ سوچ بچار کرنی چاہیے کہ نئی دہلی میں نئی حکومت کے ساتھ کس طریقے سے نمٹا جائے۔ اس موقع پر پاکستان کو چاہیے کہ اس ضمن میں انتہائی غور و فکر کے بعد پالیسی تشکیل دے اور کسی غیر محتاط رد عمل کی بجائے ایک مدبرانہ رویے کا اظہار کیا جائے۔ یقینی طور پر نریندر مودی کی جماعت اس وقت 1998-2004 کی بھارتیہ جنتا پارٹی سے بہت مختلف ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان کس طرح کے تعلقات وجود میں آئیں گے اور کس طرح مودی کی قوم پرستی ہندوستان کی خارجہ پالیسی کی عکاس ہوگی، اس کا انحصار مودی کے آئندہ رویے پر ہے۔ ہندوستان کے کچھ تجزیہ نگار کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کی طرف سے چین اور پاکستان کے متعلق کہیں زیادہ سخت گیر پالیسی سامنے آئے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ کس طرح مودی کی سربراہی میں قائم حکومت بنیاد پرستوں سے دور رہ سکے گی۔ اس ضمن میں خارجہ پالیسی کا تعین بھی باقی ہے۔ پاکستان کے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پاکستان کے لیے بی جے پی نے انتخابی تقریروں میں جو کچھ کہا اور حکومت میں آ کر بی جے پی کی حکومت جو کچھ کرے گی اس کے درمیان واضح فرق ایک ایسی بنیاد ہے کہ جس کے ذریعے پاکستانی حکومت نئی سوچ اپنائے گی۔ بلا شبہ نئی حکومت دونوں ممالک کے درمیان تعلقات معمول پر لانے کے لیے موقع فراہم کر سکتی ہے، تاہم دونوں ممالک کے درمیان پائیدار تعلقات قائم کرنے کے حوالے سے اسلام آباد کو کوئی مخصوص سوچ نہیں اپنانی چاہیے کہ جس کی بنیاد نام نہاد نرم رویہ ہو، جبکہ اسے معلوم ہے کہ مشکل معاملات کے متعلق دونوں ممالک کے درمیان عدم موافقت کشیدگی پیدا کر سکتی ہے اور معاشی معاملات میں پیش رفت میں بھی رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے۔
ناظرین، ہمارے آج کے پروگرام میں نئی دہلی اسٹوڈیو سے حصہ لیں گے ہندوستان کے سینئر صحافی اور ممتاز تجزیہ نگار شکیل شمسی۔ اسلام آباد سے پروگرام میں شرکت کریں گی پاکستان کی سینئر تجزیہ نگار محترمہ فوزیہ شاہد، اور لندن اسٹوڈیو سے پروگرام میں شامل ہوں گے برے صغیر کے ممتاز دانشور اور تجزیہ نگار ڈاکٹر مقصود صدیقی۔ گفتگو کا آغاز شکیل شمسی سے کر رہے ہیں جو ہمارے دہلی اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ شمسی صاحب، السلام علیکم۔ جی جناب شمسی صاحب، پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف کے دورے کے بارے میں ہندوستان میں عام تاثر کیا پایا جاتا ہے؟
دیکھیے، ہندوستان میں خیر مقدم کی ہی فضا ہے ہر طرف، کیونکہ یہ بالکل ان ایکسپیکٹڈ تھا کہ کسی نے خواب و خیال میں بھی نہیں سوچا تھا کہ مودی کی حلف برداری میں اس طریقے کی ڈرامائی شکل اختیار کی جائے گی یا دی جائے گی اس کو، اور عالمی شہرت کا حامل بنایا جائے گا، کسی نے سوچا نہیں تھا۔ اور کسی کے فہم و گمان میں بھی بات نہیں تھی کہ صرف حلف برداری کے 18 گھنٹوں کے اندر دونوں ممالک کے درمیان بات چیت ہوگی۔ تو یہ بالکل ایک عجیب سی صورتحال تھی جس کے بارے میں کوئی سوچ نہیں سکتا تھا، اور جو کچھ بی جے پی کے کچھ لیڈران نے کہا تھا پاکستان کے حوالے سے، یا جو اب تک گفتگو کا، جب تک وہ اپوزیشن میں تھے، جو ان کا گفتگو کا انداز تھا کہ وہ ہمارے سپاہیوں کے سر واپس کریں تب ہم بات چیت کریں گے، اس طریقے کی باتیں بہت سے رتھرک تھے جو ختم ہو گئے۔ اچانک مودی نے اتنا بڑا رویہ اختیار کیا اور اتنی بڑے رویے میں تبدیلی دکھائی کہ انہوں نے بلایا تو سارک ممالک کو، لیکن سارک ممالک کا محور بن گئے نواز شریف، کیونکہ نواز شریف کا آنا زیادہ امپورٹنٹ تھا، اور لوگ سارے سمجھ رہے تھے کہ ان کو شاید پاکستان کے سختگیر عناصر نہیں آنے دیں گے، اور جو وہاں پر لوگ ہندوستان دشمن عناصر ہیں وہ نہیں چاہیں گے کہ یہ جائیں، تو ایسا لگ رہا تھا۔ لیکن خود وہ تشریف لائے، اور اس وقت ہندوستان میں جو ایک ماحول ہے پورے میں وہ بہت اچھا ماحول ہے، اور یہاں تک کہ وہ مسلمان جو طرح طرح کے خدشات میں مبتلا تھے وہ بھی اس بات سے بہت خوش ہیں کہ نواز شریف آئے اور ملے آ کر اور گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھا ہے۔
بہت بہت شکریہ۔ اور ناظرین، اسلام آباد میں پاکستان کے سینئر تجزیہ نگار محترمہ فوزیہ شاہد صاحبہ موجود ہیں۔ جی فوزیہ شاہد صاحبہ، آپ کیا کہیں گی اس دورے کے بارے میں؟ آپ کی نظر میں یہ دورہ کتنا کامیاب کہا جا سکتا ہے؟
دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کے اگر ہم پس منظر دیکھتے ہیں یا اس کے پہلے اس کے پہلو کا جائزہ لیں تو وہ بہت اہم ہے۔ ایک طویل عرصے سے پاکستان اور بھارت کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ جو ان کی بات چیت ہو رہی تھی وہ منقطع تھی، اور اس کے بعد
جی فوزیہ شاہد صاحب سے ان سے رابطہ ہمارا وقتی طور پر منقطع ہو گیا ہے۔ لندن اسٹوڈیو میں برے صغیر کے ممتاز دانشور ڈاکٹر مقصود صدیقی موجود ہے۔ جی صدیقی صاحب، آپ کیا کہیں گے نواز شریف صاحب کے دورے دہلی کے بارے میں؟
میں سمجھتا ہوں یہ بہت کامیاب دورہ رہا ہے ان کا، اور یہ کہ جو بھی اس کی وجہ ہو، مودی صاحب نے آخری وقت میں جو اتنا بڑا اٹھایا، اور جو کہ ابھی ہم نے جہاں جو دہلی سے سنا کہ جس کی کوئی امید نہیں تھی، اور جب الیکشن کے دوران میں جس طرح کی باتیں پاکستان کے بارے میں کی جا رہی تھیں،
جی جی،
اس میں نہ صرف یہ کہ وہ ان کے انڈین فوجیوں کے سر واپس کیے جائیں، بلکہ وہ یہ ذکر تھا کہ ہم جہاں جہاں دہشت، جو انہوں نے پاکستان پہ الزام لگایا تھا کہ پاکستان سے دہشت گردی ہو رہی ہے اور ہندوستان میں اس کا اثر ہو رہا ہے، تو جو پاکستان کے دہشت گردی کے اڈے ہیں ان پہ ہم حملہ کریں گے، وہ ہم ایسے کمانڈوز بھیجیں گے اس طرح کے جیسے کہ ایبٹ آباد میں جو اس کا اسامہ بن لادن کے سلسلے میں تھا کہ ہم لوگوں کو وہاں سے اپنے کمانڈوز کو بھیج کے ان کو حراست میں لے کے واپس لائیں گے، اور بہت ساری چیزیں تھیں، اور جو بمبئی میں جو 2008 کا جو حملہ تھا اس کے بارے میں लेकिन अचानक ये सब चीज़ें छोड़ के मोदी साहब ने नवाज शरीफ साहब को वहाँ दिल्ली आने की दावत दी, और नवाज शरीफ साहब ने, मैं समझता हूँ, उसका काफ़ी हद तक फ़ायदा उठाया। ये तो मतलब ये पॉजिटिव चीज़ है। नेगेटिव चीज़ ये है कि जो जाहिर होता है कि जिस तरह से मोदी साहब ने पाकिस्तान के ऊपर खासतौर पर दहशतगर्दी के बारे में जो इल्ज़ाम लगाए हैं, और के उसका जवाब में दो दो जो हम जो पाकिस्तानियों की तरफ से उनको बात करनी चाहिए थी, हो सकता है उन्होंने जो थोड़ी बहुत की हो, क्योंकि ऐसा था कि इनकी मीटिंग दो हिस्सों में हुई थी। एक
जी
हिस्से में तो ये था कि कुछ उनकी एड्स वगैरह भी बैठे हुए थे, और कुछ फिर कुछ ऐसे के लिए ये दोनों लीडरान सिर्फ आपस में उन्होंने गुफ्तगू की थी। तो हो सकता है उस दौरान नवाज शरीफ साहब ने इसको उठाया हो, लेकिन जो मैं कहना चाह रहा हूँ ये है कि जो इसमें कोई शक नहीं है, और पाकिस्तान की हुकूमत ने और पाकिस्तान के लीडरान ने और वहाँ के पॉलिटिशियंस ने इस बात पे कई दफ़ा जिक्र किया कि बलूचिस्तान में जो इस वक्त बदामनी फैली हुई है
जी
उसमें भारत का के जासूसों का बहुत बड़ा हाथ है, रॉ का। और वो ना सिर्फ ये कि वो रॉ वहाँ पे मौजूद है, बल्कि मोसाद, इजरायली सिक्योरिटी सर्विसेज, और उसके साथ साथ CIA वगैरह सब मिलके बलूचिस्तान में ये जो जो हंगामे हैं उसको उसका फैला रहे हैं, और खास तौर पे उनका जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है उसकी मदद कर रहे हैं। इसका कोई जिक्र मेरे ख्याल में नहीं किया, क्योंकि जब जब मोदी साहब ने पाकिस्तान पे दहशतगर्दी के अड्डों का इल्ज़ाम लगाया था कि उसको काबू में लाएं। और मैं ज़रा सा एक सेकेंड के लिए हट के एक बात और भी कहना चाहता हूँ कि बड़ी हैरत की बात है कि कारजाई साहब वहाँ पे थे,
जी
अफगानिस्तान के, जो अब तकरीबन उनकी सदारत ख़त्म हो रही है, उन्होंने छूटते ही वो पाकिस्तान पे उस इल्ज़ाम लगा दिया कि जो जो हेरात में इंडियन कॉन्सुलेट पे जो हमला हुआ था उसमें जो पाकिस्तान की जो लश्कर है तैयबा या जो भी वो जो है जमात उसका हाथ था। और ये नहीं कि ये मुझे ये इससे साफ जाहिर ये होता है कि ये अफगानिस्तान में भी में जो पाकिस्तान के खिलाफ जो पाया जाता, तो उन्होंने वो उस मौके से फ़ायदा उठा के पाकिस्तान पर एक तरह का ये वार किया।
जी
लेकिन दूसरी चीज़ जो नवाज शरीफ साहब को जो जो हमको इल्म नहीं है, अगर उसके बारे में बात हुई कि जो कश्मीर का जो बहुत बड़ा जो बहुत अहम मसला है उसके बारे में उन्होंने मोदी साहब से क्या कहा, क्योंकि इलेक्शन से पहले तो जैसे आपने सुना होगा कि मोदी
जी
साहब ये कह रहे थे कि अब कश्मीर का कोई कोई जो है कोई स्पेशल स्टेटस या कोई वो नहीं है, वो एक तरह से जैसे कहना चाहिए वो हिंदुस्तान का पूरा सा हिस्सा होगा, उसमें कोई नॉट ओपन टू नेगोशिएशन। अब ये दो चीज़ें जो थी इस मामले में, अब ये चूंकि इससे इसका दूसरा पहलू ये है कि अगर मोदी साहब को जब जब ने नवाज शरीफ साहब की दावत कबूल कर ली है, वो जब इस्लामाबाद जाएंगे तो उनके
जी
नहीं कि इन मौजूआत पे तफसीली गुफ्तगू, क्योंकि बहरहाल उनका जो था नवाज शरीफ साहब को बुलाया गया था सिर्फ खास
जी
तौर पे मतलब खबरदारी के लिए, उसके साथ उन्होंने थोड़ी सी गुफ्तगू की थी इस सिलसिले में।
जी
तो ये इससे मैं मेरे ख्याल में ये एक तो सही कदम था नवाज शरीफ साहब का जाने का वहाँ पे, और दूसरा ये कि बहरहाल उन्होंने ये कोशिश की कि वो उन चीज़ों पे ज़्यादा जोर दें कि आपस में ताल्लुकात ठीक करने के लिए। और उन्होंने ज़ाहिर है चूंकि खुद वो बिजनेसमैन हैं,
जी
उनकी
जी
फैमिली बिजनेस की है, तो उन्होंने वो जो बिजनेस और ये कि पाक इंडिया का जो के बारे में कि भाई हिंदुस्तान जो है वो भारत का इन्वेस्टमेंट करे पाकिस्तान में, तो ट्रेड वगैरह के बारे में ज़्यादा जोर दिया।
जी
लेकिन पाकिस्तान की आवाम जो है वो ये चाहती है कि भाई ये जो सबसे बड़ा मसला कश्मीर का है, और दूसरा जो जो बलूचिस्तान में जो मसले मसाइल हैं इनका भी कुछ सही तरह से हल निकल सके, और जो जो मदाखलत हिंदुस्तानी सीक्रेट सर्विस वहाँ पे कर रही है उसकी भी उसमें भी उसकी रोकथाम की जाए। तो बहरहाल अब ये कि एक डायलॉग का सिलसिला शुरू हो गया है, और
जी
मैं समझता हूँ कि ये उम्मीद की जाती हूँ कि ये बहुत बड़ी तब्दीली है मोदी साहब के एटीट्यूड में, क्योंकि सही मानों में पाकिस्तान के मुसलमान और जो भी मैंने
जी
पढ़ा हिंदुस्तान के मुसलमान बहुत परेशान थे जब पहले से जाहिर हो गया था कि इनकी हुकूमत आएगी, और जो कि एक्सट्रीम राइट विंग हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी
जी
जिनके बारे में ये कहा गया था कि 2002 में जो गुजरात में राइट्स में जब इन्होंने जब ये चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने कम से कम बहरहाल अगर उसमें ये शामिल नहीं थे तो उन्होंने कुछ ऐसे कदम नहीं उठाए कि जो जो 3-4-5 हज़ार मुसलमान वो कत्ल हुआ उसको उसको रोकने का, और हर दफ़ा उन्होंने इस बात इससे इनकार किया। उन्होंने कहा कि वो जो वहाँ पे जो ट्रेन में जो किस्सा हुआ था वो मुसलमानों ने किया था, हालांकि सब साबित हो गया था कि इनका जिसे कहना चाहिए फॉल्स फ्लैग अटैक था उससे मुसलमानों पे हमला करने के लिए। तो इन चीज़ों की वजह से इनकी इनकी जो रेपुटेशन थी पाकिस्तान में मुसलमानों में और इंडिया में भी, अभी भी हिंदुस्तान के मुसलमान मैं समझता हूँ
जी,
जहाँ तक खबरें मैंने पढ़ी हैं कि वो परेशानी का इजहार कर रहे हैं,
जी
खासतौर
बहुत
पर जो
बहुत शुक्रिया
जो
सिद्दीकी
नौजवान
साहब
तबका है वो परेशान
जी,
है।
हम आएंगे आपकी तरफ दोबारा जी। फौजिया शाही साहब से रابطہ दोबारा बरकरार हो गया है जी। फौजिया शाही साहब आप अपनी बात मुकम्मल करेंगी
थी कि जब हम अभी वजीर आजम के दौरे की बात कर रहे हैं
जी।
तो मेरे ख्याल में हमें थोड़ा सा उसका माजी भी देखना पड़ेगा।
बिल्कुल,
काफ़ी अरसे से पाकिस्तान के और भारत के जो ताल्लुकात हैं उसमें कोई ज़्यादा बेहतरी नहीं पाई जा रही थी, और बल्कि ये कहा जाए कि जो मुज़ाकरात थे वो भी सर्द मोहरी का शिकार हो रहे थे।
जी
तो एक तातुल जो है वो एक तकलीफ
जी, रबते में कुछ बहरहाल प्रॉब्लम है। शकील शमसी साहब, जनाब हिंदुस्तान की नई वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज ने आज अपनी
जी
पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है दिल्ली में। इसको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पाकिस्तान के साथ रवाबित के ताल्लुक से क्या कहा है?
देखिए, उन्होंने कहा है कि हम अपने तमाम पड़ोसियों के साथ, अव्वलीन तरजीह हमारी अपने पड़ोसी होंगे जिनके साथ ताल्लुकात हम ठीक करना चाहेंगे, फिर स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स जो हैं, फिर जो हमारा एक्सटेंडेड नेबरहुड है उसके बारे में हम ताल्लुकात बढ़ाएंगे और बढ़ाएंगे। ये इस वक्त जो कुछ मोदी की पॉलिसी आप देख रहे हैं और जो मोदी ने जो कुछ किया है वो बहुत बड़ा शिफ्ट है पूरे स्टैंड में, बीजेपी की हुकूमत के भी और खुद हुकूमत हिंद के स्टैंड में भी, क्योंकि अभी तक बातचीत का दरवाजा एकदम बंद था। जब बातचीत की कोई सूरत निकलती थी यहाँ का मीडिया, यहाँ के लोग, यहाँ के सियासतदान इस कदर हंगामा मचाते थे कि बात बढ़ ही नहीं पाती थी आगे से। लेकिन उसको उसे शिफ्ट करके और बहुत हिम्मत के साथ मोदी ने बुलाया, और जबकि इसका उम्मीद थी कि बहुत राइट विंग जो हिंदू हैं वो एहतजाज करेंगे, कुछ भी नहीं हुआ हिंदुस्तान में, और वो आए और यहां तक के इतना बड़ा चेंज देखने में आया कि उसी अहाते में वो भी बैठे थे जो अब तक सबसे ज्यादा पाकिस्तान के क्रिटिसाइज करने वालों में रहे, यानी शिवसेना के लोग। शिवसेना जो क्रिकेट के खिलाड़ियों की आमद की कायल नहीं थी, जो क्रिकेट के खिलाड़ियों के लिए पिच खोद दिया करती थी, उसके जब हलफ बर्दारी हुई तो उसके लोग भी वहां बैठे थे और नवाज शरीफ भी वहां मौजूद थे। तो ये बहुत बड़ा स्टैंड, और ये मोदी की वजह से हुआ खाली, क्योंकि मोदी ने अपनी ताकत दिखाई और अपने स्टैंड पर रुकने का फैसला किया और बगैर किसी डर के साथ। मोदी की फितरत में शामिल है कि वो झटके देते रहते हैं या ड्रामाई शक्लें अख्तियार करते हैं और जगह जगह वो ड्रामा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ड्रामा चाहे जैसा भी हो अगर उसका मुस्बित असरात पड़ रहे हैं तो उसका खैर मकदम किया जाना चाहिए। और यही हुआ है कि हिंदुस्तान में इस बात के लिए काफी मोदी को सराहा गया है कि मोदी ने नवाज शरीफ को बुलाया। अब पसमंजर में चीजें ढूंढने की अगर हम कोशिश करेंगे तो बहुत सी चीजें मिल जाएंगी, पाकिस्तान में हिंदुस्तान की मुदाखलत, हिंदुस्तान में पाकिस्तान की मुदाखलत, ये सारी बातें बहुत जमाने से होती चली आई है, इनका सद्भाव होना चाहिए। इनको मजीद मेरे ख्याल में कुरीदने की जरूरत नहीं है कि हम कहें कि वो हमारे यहाँ दहशतगर्द भेजते रहते हैं और लश्कर ए तैयबा ये कर रही है और हिंदुस्तानी वहां पर कुछ कर रहे हैं बलोचिस्तान में। इसकी इसका मौका मेरे ख्याल में इस चीज को खत्म किया जाने की जरूरत है और दोनों मुल्कों के बीच ताल्लुकात बेहतर होना चाहिए, क्योंकि आप दोस्त तो बना सकते हैं, आप दोस्त सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन पड़ोसियों को आप नहीं कर सकते। पड़ोसी तो आपके पड़ोस में है ही, उसके साथ हम जितने दिन रहे और जब तक हम रहे बेहतर है हमारे लिए। देखिए इस वक्त खुद पाकिस्तान की सूरत हाल क्या है, पाकिस्तान में अगर आप देखें तो वहां पर रोजाना टारगेट किलिंग का शिकार हो रहे हैं, तालिबान से पाकिस्तान की फौज बरसरे पैकार है, तो खुद पाकिस्तान में भी दहशतगर्दी हो रही है, और दहशतगर्दी जहां भी पनपती है वो बुरी चीज है और वो उसका असरात हिंदुस्तान पर भी मुरतब होते हैं, क्योंकि दहशतगर्द सस्ती शोहरत के लिए इस तरीके के काम करते हैं। और ये हेरात में जो हुआ वो पहला हिंदुस्तान पर अटैक नहीं था, इससे पहले भी हिंदुस्तानी सिफारत खाने के ऊपर अटैक हो चुका है, जहां रेजिडेंट रहते थे डॉक्टर्स वहां पर अटैक हो चुका है। तो दहशतगर्दी एक हकीकत है और उस दहशतगर्दी को खत्म करने की बात की जाना चाहिए। अगर मोदी ने एक पहल की है तो अब उसमें हम कोशिश ये करें कि हम उसको ज्यादा जख्मों को कुरेदने की कोशिश ना करें, जो एक लेप लगाया जा रहा है उस लेप को और ज्यादा मजबूती दें और उसकी लेयर्स को बढ़ाएं, ताकि दोनों ममालिक के बीच में जो इख्तलाफात हों वो कम हों। और क्योंकि ये बिल्कुल एक नाकाबले यकीन सा, एक लगता था कि हम कोई ख्वाब सा देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में अचानक कितनी बड़ी तब्दीली आएगी कि नवाज शरीफ यहाँ आकर पुरानी दिल्ली में जाएंगे और लाल किले पर और जामा मस्जिद में जाकर वो लोगों से मिलेंगे, ये बिल्कुल सोच भी नहीं सकता था कोई आदमी, क्योंकि यहाँ जो माहौल बनाया गया था और जिसके लिए छोटे मोटे लीडरों ने, छुटभैयों टाइप के लीडरों ने जो कुछ बातें कही थी, उससे ये लगता था कि 4-6 महीने के अंदर जंग छिड़ जाएगी, लेकिन मोदी ने उन सबको पलट दिया एकदम, और फिलहाल तो एक काम का रास्ता। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पर कि इससे पहले भी जब अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी और उस वक्त बीजेपी की गवर्नमेंट थी, उस वक्त भी पाकिस्तान से बहुत बेहतर ताल्लुकात थे, तो कुछ पाकिस्तान की इक्वेशन बीजेपी के साथ मिलती भी है शायद, और वो दोनों जब भी इख्तदार में होते हैं, जब हिंदुस्तान में बीजेपी आ जा रही, दूसरी मरतबा यह हुआ, पहली बार भी आपको मालूम है कि किस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी वहां लेकर बस लेकर गए और उन्होंने खैर मकदम का, खैर सगाली का मैसेज दिया था। तो इस वक्त मेरा ये कहना है कि देखिए दोनों मुल्कों में बहुत से लोग ऐसे, बहुत सी ऐसी ताकतें बैठी हैं जिनके मफादात हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लड़ाई पर मबनी है, जो जो ये सोचते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में ताल्लुकात खराब होंगे तो वो उससे फायदा पहुंचेगा। पाकिस्तान में बहुत से ऐसे नासिर हैं जो हिंदुस्तान की शक्ल नहीं देखना चाहते, हिंदुस्तान से बात करना तो दरकिनार है, हिंदुस्तान को नक्शे पर नहीं देखना चाहते, वहां पर भी ऐसे लोग बैठे हैं, और बहुत से लोग यहां भी हैं जो पाकिस्तान को पाकिस्तान के नक्शे पर नहीं देखना चाहते। लेकिन अगर कोई उस मामले में आगे बात बढ़ रही है तो उसको आखिर मकदम किया जाना चाहिए। अभी हमारे सिद्दीकी साहब ने एक बात कही थी कि कश्मीर का कोई जिक्र हुआ कि नहीं हुआ, ये पहली मरतबा मैं आपसे बताऊं कि हिंदुस्तान में हुआ, अब तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तान के वजीर आजम ने मीडिया के सामने एक मजमून, एक बयान पढ़ा और उस बयान में कश्मीर का जिक्र कहीं नहीं था। कभी ऐसा हुआ नहीं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में गुफ्तगु और कश्मीर का जिक्र ना आए, या बलोचिस्तान का जिक्र नहीं किया कि वहां हिंदुस्तान कर रहा है। तो ये मेरे ख्याल में एक अच्छी बात थी, क्योंकि जो नजाई मामले हैं, जो कजियात हैं, उनको गुफ्तगु से ही हल किया जा सकता है। देखिए मोदी ने अभी सिद्दीकी साहब ने एक बात कही, मैं उसको भी वादे कर दूं कि मोदी ने कहा था आर्टिकल 370 पर बात होना चाहिए। आर्टिकल 370 क्या है? वो हिंदुस्तान के साथ इलहाक की ट्रीटी है, इलहाक की ट्रीटी है जिसके तहत वहां के लोगों को बहुत से हिंदुस्तानी कवानीन से अलग रखा गया है और हिंदुस्तान के साथ उनका जो रवैया, जो सिलसिला है, उसको सियासी तनाजुर में बिल्कुल अलग तरीके से देखा जा सकता है। तो मोदी ने कहा था कि हम इस पर बातचीत होना चाहिए, क्योंकि जो हार्ड कोर यहाँ का लोग हैं, जो राइट विंग पार्टीज हैं, वो ये कहती रही कि एक ही मुल्क में दो तरीके के कानून नहीं हो सकते, कि कश्मीरियों के लिए कोई कानून और हमारे लिए कोई कानून है। लेकिन ये बातें तो हैं, आर्टिकल 371 भी है जिसके तहत नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और दूसरे उसी के इलाके के जो सूबे हैं वहां पर भी खसूसी रियायत दी गई, वहां पर भी दूसरे लोग जाकर आबाद नहीं हो सकते, वहां भी जाकर दूसरे लोग जायदादें नहीं खरीद सकते। तो इस तरीके की जो आर्टिकल 370 है, इस पर मोदी ने कहा गुफ्तगु होना चाहिए। अब किसी वजीर ने आज कह भी दिया इस बारे में 370 के आर्टिकल को लेकर, जो हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, नए वजीर बने, उन्होंने कह दिया कि इसके खात्मे का सिलसिला शुरू हो गया, तो एक हंगामा मच गया। लेकिन मेरे ख्याल में आर्टिकल 370 जो है वो खत्म करना इतना आसान नहीं होगा, और इस पर गुफ्तगू शायद आगे हो कि क्या होना है।
जी बहुत बहुत शुक्रिया जी सिद्दीकी साहब।
जी
जनाब, ये एक नुक्ते की तरफ शकील शमसी साहब ने इशारा किया कि ऐसा पहली बार हुआ है कि पाकिस्तान का कोई सरबराह मसलन हिंदुस्तान आता है, मीडिया के सामने आता है और उसमें कश्मीर का इशू नहीं उठाया जाता है। जो गुफ्तगु हुई है और इस गुफ्तगु के बारे में पाकिस्तान के मुशीर खारजा सरताज अजीज साहब ने जो ब्रीफिंग दी है, उसमें तो उन्होंने बताया है कि गुफ्तगु में कश्मीर के मसले पर भी बातचीत पर इत्तेफाक हुआ है कि इस पर गुफ्तगु होगी, तो गुफ्तगु तो होती रही है। लेकिन मीडिया के सामने नवाज शरीफ साहब ने कश्मीर इशू को नहीं उठाया है। इसको हिंदुस्तान ने तो जाहिर है कि उसमें खैर मकदम किया जाएगा, पाकिस्तान में इस पर क्या रद्द अमल रहा है?
पाकिस्तान में इतना कोई ज़्यादा अच्छा रद्द अमल नहीं था, ये मैंने अर्ज़ किया पहले भी कि ये दो चीज़ें जो कि मोदी को जो भी उनके जो खदशात थे उन्होंने तो खुल के कह दिए, वो दहशतगर्दी पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को भी चाहिए था कि वो उन चीज़ों का जिक्र करते कि जिनसे हम पाकिस्तान को परेशानी है। तो मतलब ये कहने का कि ये दो, अब जो बलूचिस्तान का जो मसला है और उसके साथ साथ कश्मीर, ये तो ऐसी चीज़ें हैं कि जिसके बगैर, सबसे पहले तो कश्मीर, कश्मीर के ऊपर तो ज़रूरी है कि इस पर गुफ्तगू दोबारा से जारी होगी, और आए दिन अभी भी गोलियां चलती रहती हैं। और नवाज शरीफ साहब ने, वो चूंकि उनका मकसद था एक तकरीब में हिस्सा लेना, और उससे उन्होंने थोड़ा सा जाहिर है कि ये भी फायदा उठाया कि आपस में बैठ के इस गुफ्तगू कर ली, तो ठीक है। वो अगर उनका ये ख्याल था कि ये अभी इस इन इन दो मौजूदात पे तफसील में बाद में गुफ्तगू होगी, तो बेशक वो ये सही कहा उन्होंने, शकील साहब ने, कि 1999 में फरवरी में वो वाजपेयी साहब से के साथ इनके नवाज शरीफ साहब के जब था और वाजपेयी साहब को आना था, उसके बाद वो उससे मुलाकात नहीं हो पाई, और फिर ये कि पाकिस्तान में फिर मिलिट्री हुकूमत आ गई तो वो बात सारी रुक गई। तो ये सही है कि उस ज़माने में भी इसके ऊपर बात थी, लेकिन ये तो समझ लें आप कि सबसे बड़ा जो इस वक्त जो जो मसला है पाकिस्तान हिंदुस्तान के दरमियान में, वो कश्मीर का है, और वो तो हर हालत में, जब तक कि उसका कोई फाइनल सोल्यूशन नहीं निकलेगा, ये आप, मैं आपको, मुझे नहीं यकीन कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुक सही मानों में सही अच्छे हो सकते हैं। और उसका नतीजा ये होता है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों, उनकी उनकी जो उनके नेशनल बजट का जो इतना बड़ा हिस्सा उसके डिफेंस पे, और डिफेंस पे जो सर्फ हो रहा है, वो दूसरे मुल्कों के साथ साथ, अगर आपस में ताल्लुक ठीक होते, तो इतनी बड़ी बड़ी फौजें दोनों तरफ बॉर्डर के ना होती। और ये कि पाक, तो ये मेरे ख्याल में, मुझे यकीन है कि पाकिस्तान नहीं चाहता कि कोई 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 जंग हो, और मेरा ख्याल है कि हिंदुस्तान को भी कोई जंग का कोई ख्वाहिश नहीं है। और उनको उनको ये भी मालूम है कि इतना ज़्यादा पैसा जो डिफेंस पर खर्च हो रहा है, उसको उसमें कमी सी इसी सूरत में हो सकती है कि जो आपस में दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बेहतर हों। ये अब ये तो इसमें तो कोई शक नहीं है, इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि दोनों के आपस में ताल्लुकात बेहतर हों। और मुझे यकीन है कि, मैं एक चीज़ और अर्ज़ करूँ आपसे, कि मेरे अपनी ज़ाती राय भी ये है कि जैसे कि अब ये बीजेपी एक हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी है,
जी
मैं ज़ाती तौर पे इनको प्रेफर करूँगा कांग्रेस जैसी पार्टी के साथ, क्योंकि कांग्रेस मुंह से कुछ कहती है और करती कुछ कुछ जो है वो उस कहीं ज़्यादा ख़राब। कम से कम इनके साथ तो ये मालूम है कि भाई ये हिंदू नेशनलिस्ट हैं, इनका एक एजेंडा है, इनके साथ वे वी स्टैंड। उनके साथ ये था कि उन्होंने इनसे बीजेपी से बदतर किया काम अपने हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ, खास पाकिस्तान के साथ भी, और ऊपर से ये दिखाते रहे कि हम तो बहुत ही सेक्युलर और बहुत यानी इस किस्म के नॉन नॉन नेशनलिस्ट और नॉन रिलीजियस पार्टी हैं। कि उनके यहाँ, मैं समझता हूँ, जो 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 कांग्रेस पार्टी में जो खराबियाँ हैं वो बीजेपी से कहीं ज़्यादा हैं। तो ये मैं तो खैर मकदम करता हूँ कि हिंदुस्तान में ये हुकूमत आई है जिसकी शक्ल बिल्कुल सामने है, जिसके बारे में लोगों को, अगर जो मोदी साहब का जो, बल्कि ये तो बड़ा अच्छा हुआ कि उनकी जितनी हार्ड लाइन जो जो पहले थे,
जी
उनकी हार्ड लाइन की पॉलिसी में कमी आ गई। तो ये अब ये बहुत अच्छा मौका है पाकिस्तान के पास कि इसका इनकी नवाज शरीफ की विजिट का ये फायदा उठाएं, और आइंदा जो है अब तारीख मुकर्रर हो जबकि की गुफ्तगू इस्लामाबाद में हो, ताकि कश्मीर का और बलूचिस्तान का और दहशतगर्दी का मसला, पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का शिकार है। हम
जी जी
पाकिस्तान
बिल्कुल
में, या ये सही कह रहे शेख साहब के वो टारगेट किलिंग वगैरह, ये तो टारगेट किलिंग तो कोई चीज़ नहीं है, लेकिन जो 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 तहरीक तालिबान के जो जो गिरोह हैं, उनके उनसे जो पाकिस्तान दहशतगर्दी में मुबतला है, पाकिस्तान खुद चाहते खत्म हो, लेकिन इसकी तो बड़ी लंबी उसमें हम लोग।
बहुत बहुत शुक्रिया, और नाज़रीन यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, इसके बाद गुफ्तगू जारी रखेंगे। शकील शमसी साहब, जनाब ये बीजेपी जब अपोजिशन में होती है तो
जी
पाकिस्तान के
फरमाइए।
ताल्लुक से उसकी पॉलिसी कुछ और होती है, और ये बहुत पुरानी बात है। आप देखिए,
जी
जब जनसंघ पार्टी थी तो उस वक्त भी पाकिस्तान के सिलसिले में जनसंघ का रवैया दीगर पार्टियों के मुकाबले में ज़्यादा सख्त हुआ करता था, और जब जनसंघ पार्टी मर्ज हुई जनता पार्टी में और जनता पार्टी की हुकूमत बनी, वाजपेयी साहब जनसंघ से ताल्लुक़ रखते थे, वज़ीर ख़ारजा बने, तो बहुत अच्छे रवाबित पाकिस्तान से, यानी रवाबित बहाल किए उन्होंने। इसके बाद जब दोबारा वो वज़ीर आज़म बनते हैं, बीच में फिर जब भारतीय जनता पार्टी की पार्टी वो रहती है, सियासत करती है, तो पाकिस्तान मुखालिफ इसकी सियासत होती है। जब वाजपेयी साहब वज़ीर आज़म बनते हैं तो बस लेके चले जाते हैं, अमन की बस लेके वो लाहौर पहुंचते हैं, और वाजपेयी के दौर में पाकिस्तान और हिंदुस्तान में कुर्बत ज़्यादा बढ़ती है। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी फिर जब अपोजिशन में आती है, गुज़श्ता 10 साल की तारीख आप देखें तो ये पाकिस्तान के खिलाफ इनका स्टैंड बड़ा सख्त रहा है, लेकिन जैसे ही इनकी हुकूमत बनती है तो बिल्कुल वो जो मौकिफ है उसमें वाज़े तब्दीली नज़र आती है। ये मामला क्या है?
देखिए, जो भी पार्टी अपोजिशन में होती है उसका लहजा, उसकी हरकत, उस सकनात और उसके तौर तरीके सब बदल जाते हैं, और जब वो हुकूमत में होती है तो वो दूसरे अंदाज से सोचती है। उनको मालूम है कि नारों के जरिए से मुल्क नहीं चलाया जा सकता, मुल्क तो पॉलिसी पर चल सकता है, मुल्क तो हिकमत अमली से चलाया जा सकता है। तो जब अपोजिशन में होते हैं तो नारेबाजी करते हैं और नारे लगाते हैं, और जो चीज़ भी उनको हुकूमत के खिलाफ मिलती है उसको करने की कोशिश करते हैं, उठाते हैं। लेकिन अभी तक जैसा कि आपने कहा और मैं पहले भी कह चुका था कि मुझे बीजेपी और पाकिस्तान की सेटिंग सही लगती है, क्योंकि इससे पहले जब जब कोई भी संघ परिवार का आदमी आया है, मैं उसे संघ परिवार कहूं तो बेहतर है, क्योंकि वो पहले जनसंघ की शक्ल में था या बाद में जनता पार्टी में गए फिर भारतीय जनता पार्टी बनी, तो ये लोग जितने भी हैं इनका पाकिस्तान के साथ जब बिल्कुल रवैया बदल जाता है जब इक्तदार में आते हैं, और जितना वो कमजोर पाते हैं हुकूमत को उतना ज्यादा उसके ऊपर दबाव डालते हैं, वो चाहते हैं कि उसकी शर्तों पर गुफ्तगू हो, चाहते हैं उनकी शर्तों पर बातचीत हो। लेकिन उनके साथ ये है कि वो राइट विंग पार्टी हैं और वो बिल्कुल हिंदुत्व की खुलेआम वकालत करते हैं और चाहते हैं कि एक हिंदू राष्ट्र का क्याम हो। उनमें एक बहुत बड़ा तबका है जो हिंदू राष्ट्र का क्याम भी चाहता है, लेकिन पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे करने में वो यकीन रखते हैं। उसकी वजह शायद ये कि उनको मालूम है कि अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे होंगे तो दोनों मुल्क के पैसे जो हैं दिफा पर कम खर्च होंगे और तरक्की पर ज्यादा खर्च हो सकेंगे। तो ये चीज है, और मोदी से तो बिल्कुल ये उम्मीद नहीं थी कि मोदी आकर इस तरीके का रवैया अख्तियार करेंगे और इतनी जल्दी इस पर गुफ्तगु हो जाएगी और बातचीत होने लगेगी। तो ये तो आपकी बात सही है कि वो जब जब आए हैं इक्तदार में संघ परिवार के लोग, उन्होंने पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात की कोशिश की। लेकिन एक चीज, इसका एक पहलू और भी है जिस पर हम गौर कर सकते हैं कि इस वक्त मोदी ने सारी दुनिया में ये पैगाम भेज दिया है नवाज शरीफ को बुलाकर कि हम अमन चाहते हैं और हमने अमन की पहल कर दी है। अब देखिए, इसके ऊपर जाहिर बात है कि पाकिस्तान में ऐसे अनासिर बहुत से हैं जो वहां की हुकूमत से मिले हों या ना मिले हों, लेकिन उनको कहीं ना कहीं से कोई एजेंसी से उनको मदद हासिल होती है और वो हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं कोई हंगामा करा देते हैं। बम्बई में जो कुछ हमला हुआ हो, किस तरीके से आपको मालूम है पानी के जहाज के जरिए से और नावों के जरिए से, कश्तियों के जरिए से हमला किया गया, उसमें पाकिस्तान में खुद मुकदमा भी चल रहा वहां के लोगों पर जो उसमें इन्वॉल्व थे। तो ऐसी ताकतें हैं कि जो सबोटाज करने की कोशिश कर सकती हैं इस चीज को, लेकिन मोदी ने अपना पहलू मजबूत कर लिया और मोदी ने यह कहा कि सारी दुनिया ये समझ ले कि हम जो हैं इत्तेहाद चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ मिलकर रहना चाहते हैं। तो देखिए आगे होता क्या है और क्या रास्ते निकलते हैं हमको नहीं मालूम कि क्या किस करवट बैठेगा ये ऊंट, लेकिन फिलहाल तो इसका हर आदमी खैर मकदम कर रहा है और मोदी का जो स्ट्रांग से स्ट्रांग क्रिटिक है, जो उनका बहुत ज्यादा उन पर तनकीद करने वाले लोग हैं, वो भी इस बात के लिए बहुत तारीफ कर रहे हैं कि ये काम बिल्कुल गैर मुतवक्के तौर पर हुआ हिंदुस्तान में और ये जो इन्होंने शुरुआत की है ये बहुत आगे तक जाएगी और उम्मीद की जाती है। और मैं पाकिस्तान के भी सब लोगों से यही कहना चाहूंगा, जैसे अभी डॉक्टर सिद्दीकी साहब फरमा रहे थे कि उनको इन पर ज्यादा भरोसा है कांग्रेस के बनिस्बत, तो बात उनकी किसी हद तक सही भी है। कांग्रेस ने बहुत ज्यादा मुसलमानों के लिए कुछ ऐसे काम नहीं किए जिसको याद करते, और इस बार तो मुसलमानों ने उसके बहुत ज्यादा खिलाफ वोट भी किया और इसीलिए मुसलमान मुसलसल मुतबादिल की तलाश में थे कि कांग्रेस को वोट ना देना पड़े, कोई दूसरी पार्टी आ जाए, और वो कभी मुलायम सिंह को देते थे, कभी ममता को, कभी माया को, कभी लालू प्रसाद को, लेकिन किसी ना किसी शक्ल में वो फिर कांग्रेस लौट के आ जाती थी। खैर, ये तो सियासत अब तमाम हुई अगले 5 साल के लिए। अब अगले 5 साल तक मोदी के पास मैंडेट है, मोदी के पास इतने लोग हैं कि मोदी हर फैसला आसानी के साथ कर सकते हैं। मोदी को अब मखलूत हुकूमत का या जो फ्रैक्चर्ड मैंडेट नहीं मिला है। मोदी के पास 300 से ज्यादा लोग उनके साथियों में हैं, खुद उनकी खुद अपनी अक्सरियत उनकी जो है वो इतनी काफी है कि वो हर कानून को जो पास करना चाहे कर लें, लेकिन आर्टिकल 370 को वो नहीं छू सकते। आर्टिकल 370 जो है वो कानून में तरमीम करने के लिए होता है, और कानून में तरमीम करने के लिए 2/3 अक्सरियत होना लाजमी है, और वो इतना आसान भी नहीं है। उसके इंटरनेशनल रेमिफिकेशन भी हैं और उस पर हिंदुस्तान में मुसलसल बातचीत होती रही है, लेकिन वो जो कि वो गुफ्तगू करना चाहते हैं या बात करना चाहते हैं हो सकता करें, लेकिन 370 को वो अभी फिलहाल नहीं छू सकते हैं और ना उस पर कुछ कर पाएंगे। और मुझे नहीं लगता कि वो लोग मामले को खराब करने की कोशिश करेंगे ताकि कश्मीरियों को जो इंतहा पसंद कश्मीरी है, जो दहशतगर्द कश्मीरी है, उसको बहाना मिले अटैक करने का। तो इस वक्त मेरे ख्याल में मोदी की पॉलिसी यह है कि वो पुरान तौर पर अपनी अपने को मजबूत करें और सारी दुनिया में अपने को एक ऐसे लीडर की शक्ल में पेश करें कि जो हिंदुस्तान की तरक्की चाहता है और हिंदुस्तान से बेरोजगारी दूर करना चाहता है, हिंदुस्तान से महंगाई दूर करना चाहता है, इसकी तरफ वो कंसंट्रेट करने की कोशिश करेंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, फौजिया शाही साहिबा से टेलीफोन लाइन के ज़रिए राबिता बरकरार किया गया है। जी फौजिया शाही साहिबा, कहा यह जा रहा है कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के दौरे दिल्ली और उसके बाद फिर नरेंद्र मोदी से जिस माहौल में उनकी गुफ्तगू हुई है, जो बातचीत हुई है और जो पजीराई उनको मिली है वहाँ पर, उससे खुद वज़ीर आज़म नवाज शरीफ काफ़ी मुतमईन नज़र आते हैं और बहुत से हलकों का कहना है कि ये बहुत अच्छी शुरुआत है दोनों मुल्कों के दरमियान, ये अच्छी शुरुआत अच्छी पेशरफ्त में बदलेगी, इसकी आपको कितनी उम्मीद है? मेरा ख्याल है कि फौजिया शाही साहबा से टेलीफोन लाइन के ज़रिए भी राबिता बरकरार नहीं हो सका है। जी सिद्दीकी साहब, शमसी साहब,
जी
जनाब, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने दिल्ली पहुंचने पर कहा था कि वो हिंदुस्तान के साथ रवाबित वहीं से शुरू करना चाहेंगे जहां अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में पहुंचे थे। वाजपेयी के दौर में पाक हिंद रवाबित कहां पहुंचे थे, एक मुख्तसर जायजा अगर आप पेश करें। किस हद तक नजदीक हुए
तो उस वक्त जो दोनों मुल्कों के लिए सबसे बीच में सदाए सरहद के नाम से बस का सिलसिला शुरू हुआ था और दोनों में तिजारती सिलसिले का आगाज हुआ था। बहुत सी चीजें ऐसी थी कि जो उस वक्त शुरू हुई, लेकिन उसमें आपको मालूम है कि कारगिल में उस वक्त मुशर्रफ चीफ ऑफ स्टाफ थे और उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे और उन्होंने किस तरीके से कारगिल में बगैर नवाज शरीफ की मर्जी के और उन्होंने वहां पर दरअंदाजी की और उसके बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में तकरीबन जंग की सूरत हाल पैदा हो गई और एक छोटी मोटी जंग हो भी गई कारगिल में
जी।
तो मोदी का ये जो कहना है कि वाजपेयी ने जहां से खत्म की थी, यानी कि उनका ये कलामती बात भी कि मोदी ने जिस जहां पर वाजपेयी ने वो खुशगवार माहौल पैदा किया था, उसी खुशगवार माहौल से वो आगे बढ़ना चाहते हैं, नवाज शरीफ ये कहना चाहते हैं, क्योंकि नवाज शरीफ को मालूम है कि फौजी रूलर्स ने मामले को खराब किया। फौज ने जो फौज के सिपाही सालार थे मुशर्रफ साहब, जब उन्होंने इसको खराब किया, लेकिन बाद में खुद मुशर्रफ साहब ने बहुत कोशिशें की हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में गुफ्तगू करने की, खुद वो आगरा भी गए और आगरा समिट भी हुई और सब कुछ किया उन्होंने, लेकिन बात बन नहीं पाई। अगर नवाज शरीफ उस वक्त होते तो शायद कश्मीर के मसले पर भी सुना है हमने कि किसी हद तक पहुंचने वाले थे किसी नतीजे के ऊपर, लेकिन आखिरी मिनट के ऊपर वो नहीं तय हो सका। ये भी हुआ था आगरा समिट में भी ये बात निकल के आई थी। तो जो बातें उन्हीं ने खुद कही हैं हमारे नवाज शरीफ साहब ने, तो उनको ज्यादा, क्योंकि सारी बातें तो मंजर आम पर आती नहीं है, लेकिन बहुत सी बातें जो छन कर आई थी उससे तो ये लग रहा था कि वाजपेयी और नवाज शरीफ में एक पर्सनल रैपो भी डेवलप हो गया था और उसी पर्सनल रैपो की वजह से वो अभी जब आए तो अब किसे अटल बिहारी वाजपेयी से मिलने भी गए, जबकि अटल बिहारी वाजपेयी बहुत ज्यादा अलील हैं और बातचीत भी नहीं कर पाते हैं ठीक तरीके से, उनसे वो मिलने गए। तो मुझे लगता है कि वो उनका एक इशारा था कि हम उसी दौर में चलें और वो जो मुशर्रफ के जमाने की तलखियां हैं और वो जो कारगिल के जमाने की तलखियां हैं उसको भूल कर आगे बढ़ने की कोशिश करें।
जी शमसी साहब, ये सुषमा स्वराज जो हिंदुस्तान की नई वजीर खारजा हैं, उन्होंने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें एक मसला जो उठाया है दहशतगर्दी का मसला, और उन्होंने ये मौक़िफ़ दोहराया है कि पाकिस्तान को ताल्लुकात आगे बढ़ाने के लिए दहशतगर्दी बंद करनी होगी। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का उन्होंने हवाला दिया कि उनका कहना ये है कि अगर बम के धमाके होते रहेंगे तो हम दोनों एक दूसरे की बात नहीं सुन सकेंगे। दो फरीक एक दूसरे की बात सुने इसके लिए ज़रूरी है कि बम के धमाके बंद हों, दहशतगर्दी बंद हों। तो ये जो दहशतगर्दी का मामला है, ये तो ये जो उन्होंने उठाया है सुषमा स्वराज ने, और इनडायरेक्ट वे में उन्होंने पाकिस्तान पर दहशतगर्दी की हिमायत का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी बंद करनी होगी। उनके इस बयान के बारे में आपका तजिया क्या है? जाहिर है कि इस पर
देखिए,
पाकिस्तान में
हिंदुस्तान
रद्दअमल
में
आएगा।
एक दहशतगर्दी तो वो है कि जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान के दहशतगर्दी में हिंदुस्तान कहता है तो गलत भी नहीं कहता है। बहुत से लिंक निकलते हैं पाकिस्तान के साथ, और मैंने बम्बई वाले मामले बताया, खुद पाकिस्तान के अगर लिंक ना होता तो पाकिस्तान में मुकदमा क्यों चल रहा होता। वो तो होता रहता है कि
जी
पाकिस्तान से भी आते हैं। एक दहशतगर्दी है जो इनबिल्ट है, जो हिंदुस्तान में आसाम वगैरह में है, और एक दहशतगर्दी जो है हिंदुत्वा वाली जो निकल कर आई थी, भगवा दहशतगर्दी जिसके नाम से निकल कर आई थी। तो हिंदुस्तान तीन किस्म की दहशतगर्दियों में मुब्तिला है।
जी
वो पाकिस्तान से जो दहशतगर्दी होती है उसको वो चाहती हैं कि रुके, और मैं तो कहता हूं हर किस्म की दहशतगर्दी को रोकथाम करने की कोशिश करना चाहिए। खुद पाकिस्तान बहुत परेशान है दहशतगर्दी से, और वो दहशतगर्द जो कल दूसरे मुल्कों में अटैक किया करते थे, आज पाकिस्तान के लिए वो मसला बने, ईरान के लिए मसला बने। ईरान से लोगों को अगवा करके ले जाते हैं सरहद के अंदर, और क्या क्या करते हैं आपको मालूम है, अफगानिस्तान के अंदर हमले करते। तो इस वक्त मुझे तो लगता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ मिलके एक टास्क फोर्स बनाना चाहिए, और उस टास्क फोर्स के जरिए से दोनों मुल्कों के अंदर जहां जहां दहशतगर्दी हो रही है उस पर नजर रखें, और एक दूसरे को इत्तला फराहम करें, एक दूसरे के साथ हमकारी करें। तो मुझे लगता है कि दोनों मुल्क इस लानत से छुटकारा पा सकते हैं।
सिद्दीकी साहब, जी सिद्दीकी साहब,
जी 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 जी
जनाब, ये मामला बहरहाल दहशतगर्दी भी है, कश्मीर इशू भी है, और पाकिस्तान का अपना मौक़िफ़ है, हिंदुस्तान का अपना मौक़िफ़ है। इस दरमियान बहरहाल
जी
बात अगर आगे बढ़ानी है तो वो
जी
कौन सा तरीका हो सकता है कि दोनों मुल्कों की क़यादतें बातचीत का सिलसिला भी जारी रखें, इख्तलाफात को कम तरीन सतह पर भी लाएँ, और जो अहम कोर इशू हैं, हिंदुस्तान की नज़र में दहशतगर्दी अहम
जी
तरीन मसला है, पाकिस्तान की नज़र में शायद कश्मीर अहम तरीन मसला होगा, इन मसाइल को हल भी किया जाए
जी
और तलखियां भी ना पैदा हों।
जी जी अब बिल्कुल। और उसमें एक चीज मैं बताना चाह रहा था कि ये मैं समझता हूँ पाकिस्तान ने तो
ढाई मिनट का वक्त है हमारे पास, ये
उसमें
हम अर्ज कर दीजिए,
पेशकदमी जी
ढाई
जी
मिनट
जी
का वक्त है हमारे पास। जी
पाकिस्तान ने, ठीक है, पाकिस्तान ने तो उसमें पेशकदमी कर दी ऑलरेडी। देखिए, 150 से कुछ ऐसे जो फिशरमैन थे मछेरे उनको रिहा कर दिया गया
जी
हिंदुस्तान के। उसके साथ साथ एक दो तीन चीज़ें और मैं अर्ज करूंगा
जी
कि एक तो ये था कि जब उन्होंने दिल्ली में नवाज शरीफ साहब ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की उसमें
जी
उन्होंने कोई कोई कश्मीर का कोई जिक्र नहीं किया। उसके साथ साथ जैसे हमको इल्म है कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जो लीडरान हैं
जी
उनसे भी उन्होंने मुलाकात नहीं की। तो यानी ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने वो जो जो बहुत ही जो सेंसिटिव टॉपिक है उसके बारे में अपने इस दौरे में उन्होंने उसको बिल्कुल दूर रखा। जाहिर है इसकी वजह से पाकिस्तान में कुछ के अवाम में भी और वहाँ के उनके दायरों में भी इस चीज़ के लोगों ने इस बात पे बहुत ही मैं समझता हूँ गम गुस्से का इजहार किया कि उन्होंने क्यों नहीं किया। लेकिन मैं एक तरह से देखा जाए तो एक एक पॉलिटिकली उन्होंने कहा कि जो पहली मुलाकात में हम उन इतना इतना डीपली उसमें ना जाएं, लेकिन पाकिस्तान ने उसमें पेशकदमी कर दी है। और ये जो है इसमें कोई शक नहीं, जैसा आपने फरमाया है कि जो जो सबसे अहम मसला है वो कश्मीर का है दोनों ममालिक के दरमियान। और जो जहाँ तक दहशतगर्दी की बात है, पाकिस्तान दहशतगर्दी से ज़्यादा मुतासिर हो रहा है बनिस्बत के हिंदुस्तान की। ये बात लोगों को बात समझ में आनी चाहिए। ये बात पाकिस्तान की पूरी कोशिश हो रही है, जैसे आपको इल्म है कि तालिबान के साथ मुजाकरात, और वो भी उसमें भी बड़ा तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ जो मुजाकरात हैं उसमें बड़ी बहुत तकरीब काफ़ी काफ़ी हद तक नाकामयाबी हुई है। और फौज ने फिर आखिरकार मजबूर होकर ये फैसला किया कि कुछ तालिबान के ऊपर हमला किया जाए, फिजाई हमला।
जी
तो पाकिस्तान अपनी तरफ से मुकम्मल तौर पर कोशिश कर रहा, पाकिस्तान के लिए तो जाहिर है कि उनके लिए, पाकिस्तान के लिए बेहतर है
बीस
कि ये
सेकेंड
जो
जी
जो दहशत गर्दी है वो ख़त्म हो। जी, और जो मैं समझता हूँ कि अफगानिस्तान से अमरीकी फौजी जब निकलेंगी और उसका भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा असर होगा कि उससे दहशत गर्दी मुझे यकीन है कि पाकिस्तान में भी कम
बहुत
होगी।
बहुत शुक्रिया, बहुत
और
बहुत शुक्रिया
दोनों
डॉक्टर
मिलकर
मखसूस सिद्दीकी साहब। इसी के साथ हम शकील शमसी साहब के भी शुक्रगुजार हैं, फौजिया शाहिद से माजरत खां हैं कि उनसे राबिता बरकरार नहीं हो सका। बहरहाल दोनों मुल्कों के दरमियान अच्छी शुरुआत हुई है और तवक्को यही की जा सकती है कि ये अच्छी शुरुआत इंशाल्लाह अच्छी पेशरफ्त में भी तब्दील होगी। इसी के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, खुदा हाफिज़।